तो आज हम चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 6 नंबर जो अध्याय है लिबरेशन ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य के उद्धार, इस शीर्षक अध्याय का 3 श्लोक का पठन करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले 30 नंबर वाला है, तो मैं 128, 129 और 130 इधर लिखा हुआ है, तो मैं 128 और 129 को पढ़ देता हूँ, उसके बाद एक साथ हम लोग 130 को पढ़ेंगे। 128 में है, भट्टाचार्य कहे ना बुझी है न ज्ञान जा, बुझीवार आहि सेहो पूछे पुनर्वार। अनुवाद मैं इंग्लिश में करता हूँ, थोड़ी देर बाद अनुवादक हो या कोई तो हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं। सर्वम भट्टाचार्य रिप्लाइड, I accept that you do not understand. Yet even one who does not understand inquires about the subject matter. 129. Tumi shuni shuni raho mono matra dhori, hridaye ki ache tomar bujhite na pari. Anuvad. You are hearing again and again, yet you keep silent. I cannot understand what is actually within your mind. और अभी जो लिखे यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी किसी और को पढ़ना पड़ेगा। प्रभु कहे सूत्रेर अर्थ बुझिए निर्मल, तुम्हार व्याख्या शनि मन है तो विकल। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु देन रिप्लाई रिलेटेड हिज रिवील्ड हिज माइंड सेइंग आई कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच सूत्र very clearly, but your explanations have simply agitated my mind. Purport. In factual meaning of the aphorism of Vedas, Vedanta Sutra is as clear as sunshine. The Mayavadi philosophers simply try to cover the sun sign with the clouds of interpretations imagined by Shankaracharya and his followers.
ने कहा, मैं मानता हूँ कि आप नहीं समझ रहे, किंतु जिसकी समझ में नहीं आता वह भी तो विषय वस्तु के विषय में जिज्ञासा करता है। हाँ, लगातार सुनते जा रहे हैं किंतु मौन धारण किए हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वास्तव में आपके मन में है क्या। तब महाप्रभु ने यह कहते हुए अपने मन की बात प्रकट की, मैं प्रत्येक सूत्र का अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, किंतु आपकी व्याख्या ने मेरे मन को विचलित कर दिया। वेदांत सूत्र के श्लोकों का वास्तविक अर्थ तो सूर्य प्रकाश के समान स्पष्ट है, क्योंकि मायावादी दर्शन में सूर्य प्रकाश को शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी द्वारा कल्पित व्याख्याओं के बादलों से आच्छादित करने का प्रयास करते हैं।
तो आप सबसे आशीर्वाद मांग के कृपा अपेक्षा करके कुछ बोलने का दुस्साहस कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, बंगाली मेरा मातृभाषा है, लेकिन हालांकि बहुत अभ्यास करने के उपरांत जो भी बोलने का कोशिश कर रहा हूँ उसको आप कृपा दृष्टि या क्षमा की दृष्टि से देखिएगा। ये जो विषय के ऊपर अभी चर्चा चल रहा है, ये बहुत ही आकर्षणीय विषय है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन इतना सुंदर है कि ये पत्थर को भी बिगड़ सकता है। वैष्णव आचार्य बता रहे हैं, पशु पाखी जुरे पाषाण बीदारे सुनी जा गुणों गाथा। चैतन्य महाप्रभु का जो जीवनी है, चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है, ये सुन के पशु पंछी यहाँ तक पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत को इस्कॉन के परिभाषा में बोला जाता है PhD। भगवद गीता है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है भागवतम, और ये है PhD। चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में भविष्यवाणी किए हैं हमारे आचार्य भक्तिवृंद ठाकुर के एक दिन चैतन्य चरितामृत को पढ़ने के लिए सारा विश्व के लोग बंगाली सीखेंगे। इसलिए मेरा हिंदी सीखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बंगाली सीखना पड़ेगा। आपको कभी ना कभी ये हमारे आचार्यों का हमारे प्रति आदेश है, इसलिए आप सबको बंगाल आना है और बंगाली सीखना है। हरी बोल। तो इसको मैं आप सबको याद दिला दिया, जिन्होंने नहीं सीखा है सीखने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। तो कृष्ण के बारे में श्रवण करना या अलौकिक कुछ श्रवण करना, उसमें एक देवत्व है, देवत्व मतलब ऐश्वरिक व्यवहार है भगवान। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत पाठ करने से व्यक्ति या भक्त बहुत समझ सकता है कि जीवन शैली के साथ बहुत मिलता है चैतन्य महाप्रभु का यह जीवन। कैसे वो कि व्यवहार कर रहे हैं दूसरों से, कैसे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, कैसे मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कौन कौन सा आरती वो देखते थे, सारा दिन क्या करते थे, एक भक्त का जीवन है। इसलिए भक्तों को ज्यादा आनंद आता है जब चैतन्य चरितामृत कोई पढ़ता है। तो कृष्ण तो भगवान है, सब जानते हैं, लेकिन कृष्ण वही कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जी सतीशुद्ध होलो श्री बलराम होलो निताई, वो जब आते हैं गौरांग महाप्रभु के स्वरूप में तब और भी मजेदार चीज हो जाता है। वो क्या है ना, कृष्ण भक्त के स्वरूप में आए तो हम लोग भी भक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु खुद आके दिखा रहे हैं कलयुग में कैसे भक्ति करना है और एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, वही है चैतन्य चरितामृत। कैसे वो व्यवहार कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो कथा का सूत्र पकड़ के मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगा, आगे जाऊंगा, ताकि बहुत सारे भक्त लोग जहाँ उपस्थित हैं उनको समझ में आए कि ये क्या चल रहा है। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सार्व भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बोल रहे हैं कि आप तो चुपचाप भी बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं हो। कुछ दिन पहले, कुछ पहले का श्लोक में महाप्रभु बोले आप जो बोले कुछ समझ में नहीं आया। तो सार्व भट्टाचार्य यहाँ पर बता रहे हैं कि यार तुम बोलेगा नहीं तब कैसे समझेगा कि तुम कुछ समझता नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं ना क्लास के उपरांत, लोग बोलते हैं कोई प्रश्न है तो कभी कोई नहीं बोलता है, तो उसका दो अर्थ होता है, या तो सब समझ गए या तो कुछ भी नहीं समझ, दो हो सकता है, या तो सब समझ गए या तो कुछ भी नहीं समझे। तो प्रश्न पूछने से समझ में आता है कि भाई तुमने समझा है कि नहीं समझा है। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो पूछना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु काटवा में संन्यास लिए, उसके बाद शांतिपुर में 3 दिन रुके, अपने माता सची माता का आशीर्वाद लेके पुनः कुछ भक्तों के साथ वो पुरी की तरफ चल पड़े, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का माँ सची माता का इच्छा था कि श्री गौरांग महाप्रभु पुरी में रहे, वृंदावन में नहीं रहे, ताकि उनको खबर मिले। तो माँ का आदेश उधार ये करके चैतन्य महाप्रभु पुरी में आते हैं। पुरी में आने के उपरांत वो जब भगवान, इसके भीतर बहुत कुछ लीलाएं होते हैं, उसके उपरांत जब वो चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का मंदिर का छोटा दर्शन करते हैं तो उधर से दौड़ना चालू करते हैं। उसके पहले नित्यानंद प्रभु उनका दंड को तोड़ देते हैं। तो महाप्रभु बोलता है कि या तो तुम लोग पहले जाओ या तो मैं पहले जाता हूँ, आप लोग पीछे आओ। तो सब लोग बोले नहीं, आप पहले जाइए, हम तो बाद में आएंगे, आपके पीछे पीछे। तुरंत जैसे महाप्रभु का और जगन्नाथ जी का मंदिर का शिखर दर्शन हुआ, सुदर्शन दर्शन हुआ, तो महाप्रभु दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते एकदम मंदिर के भीतर कक्ष में, जहाँ पर गर्भगृह में भगवान ठाकुर जी का शिव विग्रह है जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी, उधर जाके वो संगहीन हो जाते हैं। तब सार्वभौम भट्टाचार्य जो उधर के हेड पुजारी या पंडित थे, जो हालांकि दो भाई थे नवद्वीप से ही, विद्यावतीपति एवं सार्वभौम भट्टाचार्य, दोनों ही भाई थे और दोनों ऋतुद्वीप में रहते थे, और तब प्रताप रुद्र महाराज वो उनको लेके आए सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने राज पुजारी और राज पंडित के सम्मान देखे श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में, और तब से वो उधर ही थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे, मायावादी मतलब जो मायावाद का प्रचार करते हैं और वो सोचते हैं कि सब ब्रह्म है, जगत सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य और हम ही भगवान है, हम ही भगवान है। अभी भी लोग बोलते हैं सो हम, कोई कोई जगह पे जाएंगे सुनेंगे मैं ही वही कृष्ण हूँ, मैं ही वही नारायण हूँ, हाँ, एक दूसरे के साथ महादेव जब मिलते हैं एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, नमो नारायण है, मतलब तुम्हारा तुम नारायण मैं नारायण, दोनों दोनों को नमस्कार करते हैं। ये मायावाद तत्व सुनना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करो, लीला में है तो बताना पड़ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु वो उधर जाके संगाइन होते हैं और सारा भट्टाचार्य उनको लेके अपने घर में लेके जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है और विद्वान पंडित थे और उनको समझ में आता है कि साधारण पुरुष नहीं है, इनके अंग में अष्टशाब्दिक विकार आ रहा है और इनको दर्शन मात्रे ना नारायण का स्मृति आ रहा है। तो यहाँ तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये तो स्वयं नारायण ही है। तो उनको शिविका, शिविका मतलब पालकी करके वो तभी तक चैतन्य महाप्रभु संगा ही नहीं थे और वहां पर लेके जाते हैं। लेके जाने के ऊपर धर्म भट्टाचार्य हर दिन देखते हैं कि ये जो नव युवक 24 साल में संन्यास ले लिया, तो महाप्रभु का वो लीला फिर से इसको प्रभुपाद ने चालू किया, जवान भक्तों को संन्यास दे दिया। तो महाप्रभु ने चालू किया एक्चुअली 24 साल में संन्यास लिए, और तब जाके वो देख रहे हैं धर्म भट्टाचार्य, वो तो गंभीर थे, थोड़ा वरिष्ठ थे उम्र में भी, और वो देखते थे कि ये सन्यासी सिर्फ नाच रहा है, कूद रहा है, गाना गा रहा है, रास्ते में उतर के नृत्य कर रहा है, ये तो भावुक है, इसको अगर वेदांत का शिक्षा नहीं देंगे तो ये सन्यास रक्षा नहीं कर पाएगा। तो एक दिन उनके जो बहन के हस्बैंड थे, पति देव चंद्र महाप्रभु के बाल सखा थे गोपीनाथ आचार्य, उनको बोलते हैं कि भाई ये तो सन्यास रख नहीं पाएगा, इसको वेदांत का ज्ञान मैं दूंगा। तो फिर वो महाप्रभु को बोलते हैं कि तुमको बोलो एक अच्छा दिन है, उसको देख के हम लोग इसको पढ़ाएंगे। तो महाप्रभु जो खुद पंडित थे, निमाय पंडित, और सब कुछ छोड़ के जो सन्यास लिए हैं, वो भी राजी हो जाते हैं कि हम सुनेंगे, वो बोल रहे हैं मेरे अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, तो हम तुमसे सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। और जाके उच्च आसन दिया गया, क्योंकि वो सन्यासी हैं और ये गृहस्थ हैं, इसलिए महाप्रभु को ऊंचा आसन दिया गया और महाप्रभु उधर बैठे महामौनी की तरह, बात ही नहीं कर रहे हैं। और इधर 7 दिन व्याख्या कर रहे हैं, कौन वेदांत का व्याख्या कर रहे हैं, कौन व्याख्या कर रहे हैं, सारा भट्टाचार्य। तो 7 दिन के उपरांत एक दिन भी महाप्रभु ने बात नहीं किया, सुन रहे हैं। तो सुनने के उपरांत अंतिम दिन में पूछते हैं कि हे नव युवक, हे नवीन सन्यासी, आप तो महामौनि की तरह बैठे हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, आपको समझ में आया क्या? तो 7 दिन के बाद महाप्रभु एक ही चीज बोले, कुछ नहीं समझ में आया। तो फिर वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, बोले इतना पढ़ाया है, इतना कुछ क्या सोचिए, 7 दिन हम थोड़ा सा बचाव करते हैं, लोग समझते नहीं, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, कहते कुछ नहीं समझे, भागो इधर से। हम लोग विरक्त हो जाते हैं। इन्हें 7 दिन तक महाप्रभु को सुनाए, उसके उपरांत महाप्रभु को बोले, महाप्रभु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। श्री श्री राधा राधिक रमन जीव की, कृष्ण राम की, ग्राम महारानी की, गौर की। तो महाप्रभु फिर उनको बोलते हैं, तो फिर भी 2 श्लोक को सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे। और महाप्रभु तब धीरे धीरे आपको साक्षात्कार होगा जब आगे कथा चलेगा। चैतन्य महाप्रभु बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत विशेष है ये सेक्शन। तो महाप्रभु उनको बोल रहे हैं कि अंतिम में कि हर श्लोक तो मैं समझ गया, उसका तो मैं जो संपूर्ण रूप से वेदांत का जो सूत्र है उसको मैं समझ गया, लेकिन आपने जो व्याख्या किया वो मेरे को समझ में नहीं आया। आपका व्याख्या कैसे था, जैसे सूरज है उसके ऊपर काला घोंघर, हाँ बादल आ गया, तो सूरज तो समझ में आता है, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण था नहीं माया नदी का, जहां पर कृष्ण है वो तो समझ में आता है, लेकिन आपका जो व्याख्या है वो तो एकदम ही बेकार है। उनको बहुत चोट आया, किसको, तो गुस्सा हो जाते, बोलते आप जानते किसके साथ बात कर रहे हैं आप, कभी कभी दरबान किसी को कुछ सुनने देता है या कोई बड़ा आदमी हो तो पूछ बोलता है ना, आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं, कोई भी हो लेकिन आपको लाइन पे खड़े होकर खिचड़ी देना है, इधर नहीं आ सकते, ये चप्पल खोल के आना पड़ेगा, मंदिर का नियम है। तो बोलते हैं अरे जानते हैं हम कौन है, सर्वमंडल से गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं अब जानते हैं हम कौन है। तो फिर आगे की कथा चलते हैं, महाप्रभु उनको शुद्ध भक्ति का ज्ञान देते हैं और महाप्रभु उनको समझाते हैं कि वही कृष्ण है और उनका स्वरूप कुछ बहुत सुंदर से दिखाते हैं, दर्शन देते हैं। तभी वैष्णव आचार्यों के तत्व से, प्रवचन से और व्याख्या से हमको समझ में आता है, चैतन्य महाप्रभु 7 दिन क्यों सुने 7 दिन? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, जो मायावादी लोग होते हैं वो कृष्ण के चरण में अपराध करते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि जब कोई मायावादी का दर्शन करता है, मायावादी तत्व सुनते हैं तो गंगा नहाना पड़ता है, आपके यहाँ पर जंगल नहाना होगा। मायावादी का कोई तत्व सुनता है या ग्रंथ अध्ययन करता है तो उसको गंगा नहाना पड़ता है, इतना पवित्र होता है। उसको बताया गया है कि कोई भी व्याख्या यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मायावाद जो व्याख्या है, ये व्याख्या इतना भयंकर है कि भक्ति का जो बीज है उसको नष्ट कर देता है, उसको भून डालता है। भूनना जानते हैं, अगर आप किसी बीज को भूनेंगे उसको कभी भी स्प्राउट नहीं आएगा, स्प्राउट मतलब अंकुर नहीं आएगा। तो महाप्रभु देखिए, महाप्रभु का चरित्र कैसा है, दो चीज महाप्रभु शिक्षा देते हैं इसके माध्यम से, बहुत चीज शिक्षा देते हैं, आज दो चीज हम लोग सीखेंगे इससे। महाप्रभु बोलते हैं ये कृष्ण अपराधी है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक था उसमें महाप्रभु बता रहे हैं, मायावादी भाष्य सुन ले भय सर्वनाश। अगर मायावाद का भाष्य सुनेंगे आपका सर्वनाश होगा, जैसे दूध में सांप मुंह दिया है उस दूध को पिएंगे तो आपका सर्वनाश होगा। महाप्रभु 7 दिन सुने, बल्लभ भट्ट आया था और बल्लभ भट्ट आके महाप्रभु का अपना तत्व सिखा रहा था, सिखाने के लिए, सुनाने के लिए अपना रचना। और वो क्या बोले, वो बोले कि हम श्रीधर स्वामी से भी अच्छा टीका टिप्पणी लेके आए हैं। तो महाप्रभु बोले कि जो श्रीधर स्वामी है, स्वामी को नहीं मानता है वो वेश्या है, उसको सुनना नहीं चाहिए। महाप्रभु कभी भी किसी का व्याख्या नहीं सुनते थे, इसलिए स्वरूप दामोदर रामानंद राय को रखा गया था, खास करके स्वरूप दामोदर को महाप्रभु के पास, वो महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, सचिव थे। कोई भी कुछ सुनाना चाहता है ऐसे नहीं सुना सकता है, उसको महाप्रभु के पास, स्वरूप दामोदर के पास जाना पड़ेगा। वो चेक करेंगे सेंसरिंग बोर्ड, और वो चेक करेंगे कि क्या बोल रहे हैं। तो उसमें दो दोष अगर निकलेगा तो वो महाप्रभु को सुनाया नहीं जाएगा। कृष्णाष्टमी गोस्वामी बोल रहे हैं, हमको भी महाप्रभु को फॉलो करना चाहिए। सिद्धांत विरोध मतलब मायावाद, और एक दोष है उसको बोलते हैं रसाभास। याद रहेगा आप सबको, दो दोष है शास्त्र में रह सकता है जो बनाया जाता है टीका में। सिद्धांत विरोध, सिद्धांत विरोध मतलब मायावाद संक्षेप रूप से, और दूसरा है, दूसरा क्या बोला, रसाभास। 5 प्रकार का रस है, उसको अगर मिला देगा कोई तो ये दो अगर दोष रहेगा तो महाप्रभु उनके सुनते नहीं थे। महाप्रभु 4 व्यक्ति का, 4 महान भक्तों का अलग अलग लीलाएं, अलग अलग टीका, अलग अलग भाष्य, अलग अलग कविताएं सुनते थे। वो 4 व्यक्ति है, बड़ू चंडीदास, बिल्लो मंगल ठाकुर, विद्यापति एवं जयदेव गोस्वामी। बहुत प्रेम से महाप्रभु सुनते थे, यहां तक कि महाप्रभु सुन के भाव में विभोर हो जाते थे और इतना आनंद देते थे कि नृत्य कृत्य चालू कर देते। याद रहेगा 4 जन का नाम मैं फिर से बताऊं, बड़ू चंडीदास, ये चंडीदास में दुर्गा का चंडीदास नहीं, दुर्गा पूजा का चंडीदास नहीं, वो चंडीदास नहीं कि वैष्णव चंडीदास, उनके बाबा मम्मी ने नाम रखा था चंडीदास, आपका ध्यान व्रत चल रहा है। तो जो कृष्ण भक्ति प्रदान करती है, बड़ू चंडीदास, बिल्लो मंगल ठाकुर, कृष्ण कर्णामृत जो लिखे हैं, हे देव हे दैत हे भवनैक सिंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा भवितसि पदम दिशो मे। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं, महाप्रभु उनका श्रवण करते थे, आनंद में रहते थे। तो बड़ू चंडीदास, बिल्लो मंगल ठाकुर, विद्यापति और जयदेव गोस्वामी। चारों का महाप्रभु श्रवण करते थे क्योंकि इन चारों में ये दोष नहीं था। कौन सा दो दोष? सिद्धांत विरोध, रसाभास, ये नहीं रहता था। तो कभी कभी कोई कुछ अच्छा बोलता है, कीर्तन अच्छा करता है या भाष्य बहुत अच्छा बोलता है, बड़ा बड़ा श्लोक उच्चारण करता है, तो हम लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन हमको कभी कभी उनके भक्त के शरीर में या भक्त के स्वरूप में भी वो लोग आते हैं और भक्त जैसे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको सावधानी रखना चाहिए, उनसे श्रवण नहीं करना चाहिए। उसका उदाहरण फिर से हम लोग चैतन्य चरितामृत में जाएंगे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब पुरी की तरफ आ रहे थे महाप्रभु से मिलने के लिए, बंगाल में उनको एक भक्त से परिचय होता है, उनका नाम है रामदास विश्वास। याद है आपको ये फर्स्ट टाइम? हाँ, तो रामदास कौन कौन सुनना चाहता है? इसमें मायावादी लोग एकदम होते हैं, कैसे जानते हैं? भक्त की तरह वो भी नाम लेते हैं, राम का नाम लेंगे, राम राम। इनका नाम था रामदास विश्वास, विश्वास बांग्ला में विश्वास, रामदास विश्वास। तो वो सबसे में नाम राम कहते थे, सबसे में राम 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 कहते थे। और मायावादों के साथ आपका समस्या यही है कि अपना व्याख्या ऐसे करेंगे ना कि आप पागल हो जाओ। क्या व्याख्या दिया, कभी कभी आप सुन नहीं देगा आपको। कुरुक्षेत्र को कुछ जगह नहीं है, है लेकिन बोलेंगे नहीं जगह है, शरीर ही कुरुक्षेत्र है। पांच पांडव नहीं थे, पांच इंद्रियाएं पांच पांडव है, समझे? और षडविपु ये है कौरव, और कृष्ण कौन है? परमा आत्मा, आपका मन, हरे कृष्णा। हरे सचमुच कितना सुंदर बोल रहे हैं। और युक्ति के माध्यम से, बात के माध्यम से, बात विकंड से आपको पराजित कर देंगे, या ऐसा बोलेंगे कि आपको लगेगा सचमुच शास्त्र ही बोल रहा है, लेकिन सब कुछ मिथ्या है, सब बेकार है। शंकराचार्य के पीछे एक दिन एक बड़ा सा हाथी पागल होकर दौड़ रहा था, और उसके कुछ दिन पहले ही शंकराचार्य ने सबको सिखाया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब मिथ्या है। तो जब शंकराचार्य भाग रहे हैं, संस्कृत में हाथी को बोला जाता है कुंजरा। तो शंकराचार्य भाग रहे हैं, तो उनके शिष्य जो क्लास अटेंड किए थे बोले, गुरुदेव क्यों भाग रहे हैं, जगत मिथ्या कुंजर मिथ्या। तो शंकराचार्य ने फिर से भाष्य दिया अपना उधर पलाल भागते भागते, जगत मिथ्या कुंजर मिथ्या पलायनम मिथ्या। जब पलायन में भाग रहा हूं ये भी मिथ्या है, हरी बोल ये भी मिथ्या है, ये क्यों सोच रहे हो कि ये सत्य है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो कैसे भी करके ये ऐसे आपको विचलित करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है। और उनका आवाज, उनका रहन सहन ऐसा रहेगा मायावादियों का, आपको लगेगा तो परम भक्त है, आंख बंद करके तिलक बिलक लगा के ऐसे गाना गाएंगे, ऐसे शास्त्र बोलेंगे, क्या पागल हो जाओगे सच में। तो ऐसे ही एक जन थे। तो रघुनाथ भट्ट वो जब जा रहे थे, इनसे मिले बंगाल में, तो बंगाल में जब मिले तो बहुत खुश हो गए। वो अपना पूरा रघुनाथ भट्ट का सामान पूरी में बह के अपने कंधे में लेके आए, कुछ बात ही नहीं करते हैं, सब समय कृष्ण नाम वैष्णव सेवा, और सब समय राम 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 राम, राम बोल रहे। लेकिन महाप्रभु जैसे रघुनाथ भट्ट से मिले बोले हरि बोल रघुनाथ भट्ट, आलिंगन कर लिए, रामदास को देख ही नहीं रहे हैं महाप्रभु। तो बोले कि कैसा विचार है तुम मन में, तुमका खबर, इतना कुछ किया मेरे लिए, इतना खाना परोसा, मेरा सामान लेके आया, सब समय राम नाम कर रहा है। तो महाप्रभु तो अंतर्जामी भगवान है, वो तो जानते हैं उनके हृदय में, इसके हृदय में क्या हो रहा है। तो फिर अपना संदेह अपने दिल में नहीं रख पाए रघुनाथ भट्ट, और वो जाके महाप्रभु बोलते हैं, श्रीमन महाप्रभु मेरे को एक अगर आश्वासन दे, कृपा दे, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो पूछो, जब आपने रामदास को कृपा नहीं दिया, रामदास विश्वास को, तो महाप्रभु बोले वो मायावादी है, वो राम नाम के माध्यम से राम होना चाहता है, ही वॉन्टेड टू बी राम, इसलिए वो राम का नाम का जप करता है। क्यों? वो एक दिन राम होना चाहता है। इसलिए प्रभुपाद जी भी हमको सावधान किए हैं कि हमको बहुत सावधानी में रखना चाहिए कौन सा किताब हम पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद किताब के सिवा और किसी किताब को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जब तक नहीं हमको प्रभुपाद का सब किताब पढ़ लें, बाकी किताब नहीं पढ़ना चाहिए। कब जाके वो रामदास घुस जाएगा सर पे, और आपको विश्वास भी होगा कि आप ठीक चल रहे हैं, हम लोग रामदास विश्वास हो जाएंगे और लगेगा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अपना अपना जल्पना कल्पना से माध्यम से कृष्ण से ठाकुर जी से बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए सिर्फ सिर्फ प्रभुपाद के पास प्रभुपाद शिष्या के बोलते हैं हमको ये पढ़ना है, उसको वो पढ़ना है, आपके गुरुदेव का भी किताब पढ़ना है, ये करना है। प्रभुपाद बोले मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए लिखा किताब और मैं आपके लिए लिखा मेरा किताब पढ़ो तुम, और कहीं पर तुमको जाने का जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा खतरनाक चीज है कोई अगर भगवान बनना चाहे। आप लोग भगवान बनना चाहते हैं? तो मैं तो कहता हूं भगवान क्यों बनेंगे, भगवान से बड़ा बनना चाहिए। कैसे भगवान से बड़े बन सकते हैं? भक्त होके। हरि बोल। नंद बाबा और यशोदा खड़े थे और कृष्ण को बोल रहे हैं कि नंद बाबा मेरा खड़ाऊ लेके आओ। भक्ति से प्रेम के बदले जाते हैं। हाँ, दामोदर अष्टकम गया ना कुछ दिन पहले, जिनको त्रिभुवन के जो स्वामी है, जिनको कोई दर्शन करने के लिए योगी पुरुष लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसको एक अबला स्त्री अनपढ़ गंवार प्रेम से बांधती, उनसे डर के भगवान विचलित हो गए। इसलिए मायावाद जो है भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका प्रचंड रूप से खंडन किए हैं। एक मायावादी से वो मिले ट्रेन में, जो मायावाद बता रहा था हम ब्रह्मा है, हम भगवान है, ये है, सब एक है। तो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके शिष्य को बोले इसको सड़ा हुआ आम खिला। तो बोले कि तुमको दिया प्लेट में सड़ा हुआ आम। बोले इसी तो कैसे खाएंगे? बोले क्यों, सब तो समान है। अच्छा, आम पूरा आम में अंतर क्या है? हरे कृष्णा, तो सड़ा हुआ आम खाओ। तो बेचारा उठ ही नहीं पाया, उसको बिठा के रखे और उसको बहुत जोर से बाथरूम आ गया। तो फिर बाथरूम आने के बाद वो बोलते हैं इसको उठने मत, इधर ही बिठा के रखो। ट्रेन में जा रहे थे तो उसको इतना जोर से बाथरूम आ गया। तो भक्त सिद्धांत ठाकुर बोले कि तुम पहले बोलो कि तुम स्वामी नहीं दास है, फिर बाथरूम के लिए छोड़ेंगे। तो बोले अरे बाप रे, अरे बाप रे, हम स्वामी नहीं है, हम दास है, हमको छोड़ो, हम भगवान नहीं है। तो उसको बाथरूम करने के बाद तुम अगर भगवान है बाथरूम क्यों लगता है, तुम उधर दवा क्यों नहीं रख पाए, संयम करो, भगवान सब कुछ संयम करके रख सकते हैं, गधा कहीं का जा बाथरूम करके। तो आगे फिर से बोलता नहीं हम भगवान है जो। अच्छा, तो कभी भी कोई मायावाद का कीर्तन जाता था तो संतोष ठाकुर अपने ब्रह्मचारी को भेजते थे टीना पिटने के लिए। टीना पिटने की टीना कीर्तन करते हुए जाएंगे, नारायण नारायण बोलते जाते जाए तो टीना पिटेंगे, ब्रह्मचारी लोग कहते जाओ और टीना पिटेंगे। तो प्रभुपाद को जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति बुलाया उनका किताब का उन्मोचन करने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, जो इंट्रोड्यूस है ना, उन्मोचन करने के लिए। तो जो किताब था वो मायावाद किताब था और इसने प्रभुपाद के हाथ से उसको खोलने के लिए इच्छा प्रकट किया। तो हजार हजार भक्त पूरी मंदिर के सामने वो पंडाल में थे। प्रभुपाद उठे, किताब देखे, बोले ये किताब कोई पढ़ेगा तो मर जाएगा, इसको पढ़ो ही मत, इसको ऐसे ही कवर के भीतर रहने दो, ये कोई पढ़ेगा तो जगन्नाथ स्वामी को स्वामी नहीं समझेगा। मैं आप सबको बोल रहा हूं कभी भी इस किताब को स्पर्श भी नहीं करना। श्री प्रभुपाद की वो बेचारा उधर मतलब फेंट होकर गिर गया, इतना खर्चा किया, इतना कुछ किया किताब निकालने के लिए, स्वामी जी क्या बोलने चले। तो ये था मायावाद के हमारा जो परंपरा है, ये परंपरा पर्सनल परंपरा है, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत परंपरा है। इसलिए हम सबको भी बहुत सावधानी रखना चाहिए किससे हम सुने। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि कोई भी अच्छा बोल रहा है सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। जो चार नियम का पालन सोलह माला जब और चैतन्य महाप्रभु जैसे दो नियम दो चीज देखते थे और हमारे वैष्णवाचार्य भी वही चीज देखते हैं, तब तक कैसे भी किसी से भी श्रवण नहीं करना चाहिए। गुरु परंपरा के बहिर्भूत कोई व्यक्ति से हमको श्रवण नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो भक्ति है, जो बीज है, वो भून जाएगा, उसको जितना भी पानी देंगे कुछ भी नहीं निकलेगा, तो भूना भून गया है। लेकिन फिर भी अभी प्रश्न ये उठता है, इतना मायावाद, इतना मायावाद, इतना मायावाद, लेकिन चैतन्य महाप्रभु साधन सुने क्यों? वो तो बोल रहे हैं कि मायावादी तब तक सुन ले है सर्वनाश, इन्हें क्यों सुने सात दिन बैठ के? क्योंकि महाप्रभु इनको भक्त बनाना चाहते थे। क्योंकि महाप्रभु के एक उद्देश्य था कि अगर सार्वभौम जो राजतंत्र को कंट्रोल कर रहा है, राजा को जो नियंत्रण कर रहा है प्रतापरुद्र महाराज को, इसको अगर हम भक्त बना देंगे, प्रचार प्रीचिंग इज द स्पिरिट, तो सारा नीलाचल के जितने भी पंडित व्यक्तियां थे आनंद से बोलेंगे हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
सिर्फ प्रचार के कारण है तो, लेकिन वो रीत सबको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण है, वो कर सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण नहीं है, हम कृष्ण के दास होने का कोशिश कर रहे हैं। हमको उतना तक ही सामना करना चाहिए किसी व्यक्ति का जितना तक हम में शक्ति है। कबड्डी देखा है? कबड्डी खेले आप लोग? कौन कबड्डी खेला है? कोई पतला दुबला आदमी जाएगा कबड्डी 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 चला है, क्योंकि शक्ति नहीं है, जरूरत भी नहीं है। आप मर जाओगे तो और एक बच जाएगा उधर तरफ से, तो कोई बड़ा सा घट्टा घट्टा जाएगा, कबड्डी 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 मेरे को पकड़, हाँ तो वो बड़ा खिलाड़ी है श्री प्रभुपाद की, वो भीतर घुस के सबको छू के लेके खींच के लेके आ जाएंगे। लेकिन हम में उतना शक्ति नहीं है, तो ज्यादा कबड्डी कबड्डी करने की जरूरत नहीं है, हम कबड्डी कबड्डी करके चले जाएंगे, तुरंत मंदिर आ जाएंगे, फिर से मंगल आरती करेंगे, गुरु पूजा करेंगे, नृत्य करेंगे, वैष्णव संग लेंगे, कथा सुनेंगे, नाचेंगे। सफर कितना अच्छा लग रहा था, सारे भक्त इनके जहां के जितने भी नेतृत्व दे रहे हैं, भक्तगण वैष्णवगण ब्रह्मचारी गृहस्थ से एकत्रित होकर नृत्य कर रहे हैं, ये प्रभुपाद का इच्छा है। नाच के ही मानववाद का खंडन कर सकते हैं आप, नाच के। महाप्रभु ने काशी में जाके नृत्य करवाया सबको, और सबने सबको, वो तो ऐसा भी, वो ऐसा मायावादी थे कि श्री कृष्ण चैतन्य नहीं बोल रहे थे, चैतन्य चैतन्य कर रहे थे, उनके मुंह से कृष्ण नहीं आ रहा था। आप लोग बोलिए कृष्णा, चला लोग मायावादी नहीं है, हरे कृष्ण तो भक्त है, तो वो लोग मुंह से कृष्ण नाम नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि इतने बड़े अपराधी है। तो महाप्रभु बोले ठीक है, इनको भी हम कृपा देते हैं। महाप्रभु ऐसे उनको जाके बोले कि बोले जाने आप इतने बड़े सन्यासी हैं, आपको देख के नारायण का स्मृति आ रहा है, आप नित्य कीर्तन क्यों कर रहे हैं? आपको कोई और श्लोक नहीं आता है क्या? प्रकृष्ण सरस्वती बोल रहे हैं। महाप्रभु बोले हम बहुत मूर्ख हैं, हमारे गुरुदेव हमारा मूर्खता देख के बोले कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, अभी सन्यास नहीं, हरे कृष्ण जप कर बस, और हमको यही आता है। देखो कितना सुंदर से महाप्रभु उनका हृदय जय कर लिया दैन्यता के माध्यम से। और महाप्रभु बोले हम तो यही करे, ऐसे ही महाप्रभु ने उनको बोला हरि वो, और सबका हाथ अपने आप उठ गया, हरि वो, क्या हो गया मुंह में कृष्ण नाम आ गया, क्यों? तो स्वयं नारायण है, गौरांग महाप्रभु की। ऐसे महाप्रभु ने खंडन किया। प्रभुपाद का शक्ति है। प्रभुपाद एक जगह पे क्लास दे रहे थे, एक मंदिर में आमंत्रण किया गया, और वो जो मंदिर था वो मायावाद मंदिर के जो सदस्य थे मायावादी थे, तो महाप्रभुपाद जाके तो क्लास दिए, क्लास के भीतर वो मायावाद व्यक्ति क्या किया, अपना लीफलेट वितरण कर रहा था, मायावाद फिलोसॉफी का लीफलेट, लीफलेट मतलब प्रचार प्रचार पत्र भेज रहा था। तो प्रभुपाद बोले सबको बांट दो, तो भक्त लोग आश्चर्य हो गए, बोले कि प्रभुपाद जी ये तो प्रभुपाद बोले सबको बांटो, एक एक जन को बांटो, कोई भी बाकी नहीं रहे, ठीक है, सबको बांट, सबके हाथ में लीफलेट रहना चाहिए। तो सबको बांटा, तो सब लोग विचलित हो गए, भक्त लोग क्या हो रहा है, तो लोग रखो अपने पास, फेंकना भी नहीं। सब लोग आश्चर्य, प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? और सर प्रभुपाद ने क्लास दिया, क्लास के अंत में हलवा का पैकेट लाके बोलते हैं इस पत्ते में हलवा दे दो सबको, ये प्लेट के हिसाब से यूज करो, इसमें हलवा दो, सबको हलवा बांट दो, हरी बोल, इसमें हलवा बंटवा दिए, कुछ सुकृति दे दिया, वैष्णव सेवा का सुकृति दे दिया उसको, उसको फेंके नहीं, पढ़ने के लिए नहीं दिए थे, हलवा खाने के लिए दिए थे, लोग हलवा ही खाएंगे, थोड़े ही पढ़ेंगे उसको। इसलिए हमको भी बहुत सावधानी रखना चाहिए कि कभी भी हमको भगवान के प्रेम से अगर लगाव है तो कभी भी दूसरे किसी मायावाद तत्व युक्ति तर्क श्रवण कभी नहीं करना चाहिए। महाप्रभु जब नहीं सुने तो बल्लभ भट्ट जाके गदाधर पंडित को अपना भाष्य सुना रहे थे, क्योंकि गदाधर पंडित बहुत सॉफ्ट है, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो वो सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे भगवान गौरांग क्या सोचेंगे, महाप्रभु क्या सोचेंगे, और महाप्रभु गुस्सा हो गए, बोले क्यों जाके ये गदाधर सुना उसका बात। फिर जाके सब लोग बोले कि नहीं प्रभु, हाँ वो तो जल्दी जाके आप तो जानते हैं गदाधर पंडित को। तो महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु सहन किए तो चारों भट्टाचार्य संपूर्ण रूप से आपको आगे देखेगा संपूर्ण रूप से भक्त हो जाते हैं, यहां तक भक्त हो जाते हैं, इतना बड़े भक्त हो जाते हैं कि श्रीमद् भागवतम में जो शब्द है मुक्ति, उसको बोलते हैं कि ये भक्ति है, मुक्ति मत बोलो। तो महाप्रभु बोले कमॉन प्रभु जी, इसको चेंज मत करो, ये तो भागवतम है, इसको चेंज करने का साहस तुम मत करो, ये तो श्रीमद् भागवतम है, इसको क्यों परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि बोले कि हमको चिढ़ाता है मुक्ति के नाम से, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद जी के विशेष कृपावश प्रभुपाद ने इतना कष्ट करके हमको ये ग्रंथ दिए हैं, जिस ग्रंथ में सारा संसार का सार कृष्ण भक्ति इसमें दिया गया है। प्रभुपाद यहां तक बताते हैं कि कोई भी अगर एक दो पन्ना भी पढ़ ले प्रभुपाद ग्रंथ का, उसका मायावाद चला जाएगा, उसको भक्ति आ जाएगा। हरे भाव। तो प्रभुपाद के पास एक भक्त आके बोल रहे हैं, एक आदमी आके बोलते हैं, अरे प्रभुपाद आप लोगों की तो सिर्फ किताब वितरण, किताब पठन, किताब का प्रिंटिंग, आप लोग सब किताब 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 के कीड़े हैं। प्रभुपाद बोले कि मेरा किताब पढ़ो, नहीं तो दूसरे जन्म में टट्टी में कीड़ा होगा, जन्म लेना पड़ेगा, समझा, इसका कीड़ा हो जाओ तो अच्छा है, बुक का कीड़ा। इफ यू डोंट रीड माई बुक यू विल बी, यू आर सेइंग दैट यू आर बुक वर्म्स, प्रभुपाद से यू विल बी स्टूल वर्म इफ यू डोंट रीड दिस बुक। प्रभुपाद के ग्रंथ में क्या है, सिर्फ कृष्ण 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 कृष्ण। तमाम ऋषि महाराज के पास एक व्यक्ति आके बोलते हैं कि आपके गुरुदेव तो उफ ऐसा किताब लिखे हैं जैसे दो पत्थर का क्या बोलते हैं वॉल दीवार, जो उस दीवार में से पानी अगर छूटेगा पानी कहीं भी नहीं जा सकता है, उस दीवार के भीतर ही रहेगा, चारों ओर से कृष्ण 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 कृष्ण। तमाम ऋषि महाराज बोले हाँ आपने प्रभुपाद को ठीक समझा है, हमारे गुरुदेव ऐसे ही हैं, कृष्ण को छोड़कर कुछ चाहते ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों को प्रभुपाद के किताब का आश्रय करना चाहिए और सब समय सावधान बरतना चाहिए हम किससे श्रवण कर रहे हैं। श्रवण ऐसे जैसे महाप्रभु की, जैसे महाप्रभु कृपा कर सकते हैं, और अगर आप बहुत शक्तिशाली हैं भक्त, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे डिवोटीज हैं रुक्मिणी कृष्ण प्रभु की जैसा, वो लोग मायावाद का खंडन कर सकते हैं। वो एक बार बोलेंगे तो मायावादी लोग एकदम दो गोली से उड़ जाएंगे प्रभु का कथा और कीर्तन श्रवण के बाद, लेकिन हमें वो दम नहीं है, जरूरत नहीं है दम दिखाने का, तो हम पूरा चुपसाया हुआ बलून की तरफ निकल जाएगा वो और हमारा अवस्था खराब हो जाएगा। इसीलिए हम सबको सब समय शास्त्र अध्ययन साधना वैष्णव संघ और जो व्यक्ति इस लाइन पे है उससे ही सुनना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो बोलते थे कि आप अपने शिष्य से सुनेंगे, जो कुछ भी नहीं आता है उसको, उसे एक ही चीज जानता है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना, थोड़ा सा कुछ बोल सकता है, ना कि हम बड़े बड़े तत्व विज्ञानी तत्व दृष्टा जो बड़ा बड़ा श्लोक का उच्चारण करता है लेकिन मायावादी है, उससे अच्छा है कि सरल व्यक्ति से सुनना। तो इसलिए इस श्लोक में इस पूरा कथा में आप देखेंगे महाप्रभु कैसे उसके बाद महात्मा राम श्लोक के माध्यम से खंडन करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य का, संपूर्ण रूप से खंडन करते हैं और वो बोलते हैं कि कैसे भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति जहां पर है तहां पर सब कुछ मंगलमय है, और भक्ति कैसे, भक्ति पाने के लिए हमको कुछ जरूरत नहीं है करने का एक्सटर्नली, सिर्फ प्रेम से प्रभुपाद ने जो जो चीज दिया है उसका अगर हम पालन करेंगे तो हम आनंद में भगवत भक्ति के माध्यम से कृष्ण के चरणों में समर्पित हो सकते हैं। प्रभुपाद ने हमको इतने सुंदर सुंदर भगवान दिए हैं, राधा राधिका रमन और कृष्ण बलराम जयनाथ सुभद्रा महारानी, इनका हम अगर बहुत प्रेम से सेवा करेंगे तो हमको और कुछ नहीं चाहिए। प्रभुपाद ग्रंथ अध्ययन करेंगे झावेला खत्म, तो ज्यादा कुछ इंट्रिकेसीज मतलब पेचीदा कुछ जरूरत नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सिंपल फॉर सिंपल डिवोटीज एंड डिफिकल्ट फॉर क्रूकेड पर्संस। जो बहुत ही जरूरत नहीं है वो ये वो, कभी कभी लोग बोलते हैं कि कैसे अच्छा से श्लोक बोलेंगे, ये तत्व वो तत्व, और पढ़ने के लिए चले जाते हैं इधर उधर, ये मठ वो मठ, ये संस्था वो संस्था, और जो भी गए हैं कोई लौट के नहीं आया है। तो क्या जरूरी है, जरूरी है जाना? मैं तो कभी नहीं जाऊंगा बाबा, बहुत अच्छा हूँ, बहुत आनंद में हूँ। क्यों? भगवान का दर्शन हो रहा है, इतने सारे भक्तों का सत्संग हो रहा है, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, और कैसे आ गया ऑलरेडी। तो राधा रमन मंदिर में गए कुछ भक्त लोग और जाके आशीर्वाद लेके आए। क्या आशीर्वाद लेके आए? कि तुम लोग इतना अच्छा भक्ति कर रहा है, दूसरे जन्म में हम आपको आशीर्वाद देते हैं, वृंदावन में जन्मो, राधा रमन का सेवा करो। तुम लोग बहुत खुश होगी, कितना आशीर्वाद मिला। प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद को बोले हमको ऐसा आशीर्वाद दिया, तो प्रभुपाद बोले तुम लोग जाके उनको बोलो कि आप लोगों को हम लोग आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग विदेश में जाके जन्म लो, इसका उनके भक्तों के कृष्ण का प्रचार विदेश में करो दूसरे जन्म में। प्रभुपाद की कृष्ण को वृंदावन का एक लड़का जो कृष्ण को लेके चले गए विदेश, वो है श्री प्रभुपाद, वो जानते हैं कैसे क्या करना है। इसलिए हमको इतना आशीर्वाद है कि हमारे दादाजी हैं प्रभुपाद हरिभाव, हमारे पापा लोग सब उनकी चरणों में पड़े हुए हैं, गुरुदेव वृंद। तो हमको कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है। नौ बजे पांच बजे अच्छा प्रसाद मिलता है, इतने सात भक्तों का नित्य कीर्तन मिलता है। कल रुकमणि के शुभ का बहुत चीज अच्छा लगा, बोले पांच साढ़े चार बजे से हम लोग किसने देखा है नृत्य करते हुए। मेरे को याद आया कलकत्ता में जब प्रभुपाद थे, प्रभुपाद के पास सेंट जेवियर्स के लड़के लोग आए, बोलते मैंने हम सुन रहे हैं कि आप लोग मायापुर में एक बहुत बड़ा सिटी बना रहे हैं, उधर डिस्को ठीक रहेगा क्या? तो प्रभुपाद बोलते हैं हमारा डिस्को थेक तो साढ़े चार बजे से चालू होता है, और हम लोग कहीं पर भी जाते हैं पहले डिस्को थेक ही बनाते हैं, उसके बाद बाकी काम चालू होता है। पहले डिस्को थेक, और हमारा डिस्को थेक जब तक चलता है जब तुम्हारा बंद हो जाता है, चार पंद्रह से चालू हो जाता है हमारा डिस्को थेक। प्रभुपाद बहुत हंसी मजाक कर रहे थे उनके साथ। तो प्रभुपाद ने ऐसा संस्था दिया है हमको, और इतना सुंदर आपका मंदिर और कॉम्प्लिकेशन है, आप तो स्वयं संपूर्ण है राधा राधिका रमन के चरणों में, इतने सुंदर है आपके भगवान जी, देखते रहिए उनको। और भगवान ही कंट्रोलर है, कोई भी अपनी इच्छा से अपने प्रभाव से अपने बुद्धि से कृष्ण को प्राप्ति नहीं कर सकता है। एक लीला बोल के खत्म करूं क्या? जगन्नाथ का लीला सुनना चाहेंगे? प्रसाद में दो मिनट लेट हो जाएगा, अभिशाप तो नहीं देंगे मेरे बताओ क्या? तो कैसे भगवान स्वामी है और भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि जगन्नाथ जी इधर बैठे हैं और ये लकड़ी है, या राधा राधिका रमन जी पुतले हैं, जिनको बुद्धि नहीं है उनको वो ऐसा लगता है, क्योंकि उनको वो भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। एक ब्रह्मचारी का पापा आया, देखा ब्रह्मचारी पुजारी का काम कर रहा है डेटी के साथ, तो पापा का आंख से आंसू आया, ब्रह्मचारी सोचा कि अरे पापा का हृदय परिवर्तन हो गया है। तो उसने पूछा पापा अच्छा लग रहा है, क्या हो रहा है बोलिए। तो ब्रह्मचारी सोचा कि पापा बोलेंगे बेटा तुमने अमोघ कृष्ण प्रेम मेरे को दे दिया। तो पापा ने बोला तू इतना बड़ा हो कि पुतले के साथ खेल रहा है, ये है माया बाप। संदेहिया ये लीला नहीं था लेकिन लीला में मैं बता रहा हूँ तो कैसे भगवान स्वामी है और हमारे ठाकुर जी मालिक हैं। हाँ तो 1972 में अभी के जो राजा हैं पुरी के दिव्य सिंह देव जी उनका पहला रथ यात्रा था। वो उनके पापा गुजर गए थे उसी साल तो उनका पहला था 1972 में। ये न्यूज़पेपर में आया सब जगह पे ये जो कथा मैं आपको बता रहा हूँ ये रिकॉर्डेड है एवरी जगह पे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए कि कैसे भगवान अपनी इच्छा के हिसाब से चलते हैं। कोई उसको परमुटेशन कम्युनिकेशन करने का कोशिश करेगा तो उसका सर्वनाश हो। और 1972 में पूरी मंदिर का पूरा दायित्व तो सिक्योरिटी का सबका फेस्टिवल का ओडिशा पुलिस के ऊपर दिया गया। ओडिशा गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था उस साल। कौन सा साल? राजा कौन थे? और क्या हुआ था उस समय? और उसी समय पहले भगवान के गर्भगृह में इलेक्ट्रिसिटी गया उसी साल 1972 में। पहले दीपक जलता था सिर्फ, उसके बाद 1972 में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ और पुलिस को दिया गया, ओडिशा पुलिस को दिया गया दायित्व तो रथ यात्रा का सब कुछ करने का, क्योंकि रथ यात्रा हर समय देर होता था। जो पुलिस जो कमांडर था कोई तो महापात्र, तो पुलिस कमांडर उसने बोला कि ये पांडा लोग सबसे गड़बड़ करते हैं और पुलिस सब कुछ करेगा। और इस साल सबसे अर्लीस्ट रथ यात्रा, सबसे जल्दी रथ यात्रा होगा। अब मैं इसका दायित्व लेगा। ही वॉज वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली आदमी था वो। तो वो बोला, शेड्यूल बनाया, जैसे हम लोग बनाते ना शेड्यूल, भगवान का सुदर्शन निकलेगा 7:30 बजे सवेरे, जो हालांकि निकलते 9:30-9:10 बजे निकलते हैं, 7:30 बजे निकलेगा सवेरे। ओके बोलो ओके या नहीं? मैं कमांडर, आप लोग पुलिस कांस्टेबल। बोले ठीक है भैया, आप बोल रहे तो करना पड़ेगा। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत शक्तिशाली था। तो बोलते हैं कि चलो 7:30 को सुदर्शन, 8 बजे बलदेव, 8:30 को सुभद्रा, 9 बजे जगन्नाथ। और जगन्नाथ 9 बजे निकलेंगे जब बाकी दो भाई और सुदर्शन रथ में रहना चाहिए, ये विग्रह है। ओके हरि बोल। सबने ऐसा ही हरि बोल दिया, इच्छा नहीं है फिर भी बोला ठीक है। और ऐसा ही हुआ रथ यात्रा के दिन। तो सुदर्शन जी निकले गए 7:30 बजे, पंडालों को भी बहुत गाली देखे, ये देखे पुलिस लोग करवाए, अलग अलग अपना अपना आदमी देखे, चलो 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 चलो। 7:30 को सुदर्शन 3 रथ को प्रदक्षिण करके सुभद्रा महारानी के रथ में बैठे, बलदेव जी के अगले रथ में बैठे, सुभद्रा जी भी बैठ गई, जगन्नाथ जी भी 9 बजे निकल गए। उन्हें 9 बजे निकल गए तो बहुत खुश हो गए पुलिस कमांडर। अरे 9 बजे क्या, 9:15 को मैंने भगवान को हिला दिया, भगवान वाणी करते 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 आगे निकल के आ गए। और रैंप करते हैं, रैंप सीढ़ी, सीढ़ी बनते रथ में चढ़ने के लिए, उसको रैंप बोलते हैं। सो सब लोग चढ़ गए, दाऊ जी महाराज चढ़ गए, सुभद्रा ठाकुरानी चढ़ गए, सुदर्शन देव जी चढ़ गए, जगन्नाथ जी 9 बजे आके उस रैंप के सामने जो सीढ़ी है उसमें रुक गए और इतने भारी हो गए कि 28 जन पांडवों को पकड़ के नहीं रख पा रहे हैं। कभी दाएं ओर ओ, कभी बाएं ओर ओ, 8 जन का पैर टूट गया, 3 जन का हाथ टूट गया, दूसरा सेट के लोग आए, भगवान उठ नहीं रहे हैं। तो ये सोचिए कि पांडा लोग बदमाशी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, हटाओ। पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ उनके पांडा के परिवार में कोई पुलिस थे, उनको लिया के आया गया और भगवान को उठाने की कोशिश किया गया, उनका भी चोट आया। 4 सेट के आदमी चेंज हो गए, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 भगवान कहाँ है? सीढ़ी के नीचे। 1 बजे भगवान कहाँ है? सीढ़ी के नीचे। 2 बजे भगवान कहाँ है? एक भी रथ नहीं हिल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत कुछ अपशगुन होने वाला है। अभी भगवान नीचे ही खड़े हैं और इधर से उधर उधर से उधर ये चल रहा है। तो चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, आपनो इच्छाएं चले ना चले कार बले। भगवान अपनी इच्छा से चलते हैं, किसी के बल पे नहीं चलते हैं, भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। तो नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो दिव्य सिंह देव जी का तो माता खराब हो गया। वो पालकी में आने वाले थे, नंगे पैर दौड़ के आ गए, बोले प्रभु अगर आप नहीं चलेंगे, रो रहे थे, साढ़ा उड़ीसा के साथ साथ सारे संसार का अनिष्ट हो जाएगा अगर आप रथ में नहीं दर्शन देते। रथे जब आवन दृष्टा न जन्म न विद्यते। हे प्रभु त्राही मां, हम रो रहे थे, मेरा मेरे जीवन का पहला रथ यात्रा है प्रभु, आप कृपा करके रथ में चढ़िए। और जो पुलिस कांस्टेबल था, हरे कृष्णा, वो तो महापात्र से मित्री का मीडियम के बोलते हैं मृत्यु का पाका पात्र हो गया। उसका अवस्था और देखा जाए, वो पूरा उसके ऊपर पूरा क्या बोलते हैं आकाश टूट पड़ा, वो घबरा रहा है, वो नर्वस हो रहा है, वो आगे भगवान के चरण में गिर गया, रो रहा है मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे को माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा गलती किया। फिर राजा सिंह देव जी एक सोने के पात्र में पान देते हैं भगवान को, जगन्नाथ को पान बहुत पसंद है, कभी कभी खिलाते हैं ना आपको आप जगन्नाथ को पान, पान देते हैं हमको। और वो रोते हैं भगवान को, तीन बार प्रदक्षिण करते हैं, बोलते हैं प्रभु माफ कर दीजिए, सारे संसार को कल्याण करने के लिए, सारे संसार को सबको रथ के ऊपर चढ़ के दर्शन देने के लिए आप कृपा पूर्वक रथ में चढ़िए। और सब लोगों को राजा ने कहा, राजा है प्रतिनिधि भक्तों का, और भगवान के पुरी में सबसे बड़े भक्त है राजा, उनका नाम सबसे पहले आता है, एकादशी के दिन जो दिया जलता है ऊपर उनके नाम से दिया जाता है कि राजा ठीक रहेगा तो प्रजा ठीक रहेगी, वो वैदिक संस्कृति है। तो उन्होंने सबसे कहा, सब लोग एक बार बोलिए जगन्नाथ स्वामी की, और सबको अनुरोध किए कि जोर से बोलने के लिए हरि बोल, और सबने पीछे से जगन्नाथ को ढकेला और ऊपर से खींचे, भगवान दो मिनट में रथ में चढ़ के बैठ गए। हरि स्वामी की मायावादी लोग समझ सकते हैं इसको, नहीं समझ सकते, भक्ति लोग आश्चर्य हो सकते हैं। तो ये 1972 में भगवान स्वयं अपने विग्रह के स्वरूप में पूरी में लीला किया, ऐसे हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों भक्तों के साथ भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। जो भक्ति में रहेंगे, प्रभुपाद को फॉलो करेंगे, गुरुदेव को फॉलो करेंगे, वैष्णव को सम्मान देंगे, उनके साथ भी भगवान ऐसे लीला करेंगे। इसलिए चैतन्य चरितमृत में बताया जा रहा है, अद्धा भी से लीला करे कोनो राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे का। आज भी भगवान ऐसे लीलाएं कर रहे हैं, और कौन किनको दर्शन देते हैं, भाग्यवान व्यक्ति। वो भाग्यवान व्यक्ति कौन है, जो भक्त है, जो अपने संपूर्ण रूप से अपने हृदय को कृष्ण के चरण में समर्पित किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय सर्व मठाचार्य उद्धार की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की, श्री प्रभुपाद भाष्य की, जय चैतन्य चरितामृत महाग्रंथ की।